Translation prepared by Srila Prabhupada. He who meditates on me as a Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he, O Partha, is sure to reach me. Purport. In this verse, Lord Krishna stresses the importance of remembering him. One's memory of Krishna is revived by chanting the Maha Mantra, Hare Krishna. By this practice of chanting and hearing the sound vibration of the Supreme Lord, one's ear, tongue and mind are engaged. This mystic meditation is very easy to practice and it helps one attain the Supreme Lord. Purusham means enjoyer. Although living entities belong to the marginal energy of the Supreme Lord, they are in material contamination. They think themselves enjoyers, but they are not the Supreme Enjoyer. Here it is clearly stated that the Supreme Enjoyer is the Supreme Personality of Godhead in his different manifestations and plenary expansions as Narayana, Vasudeva, etc. The devotee can constantly think of the object of worship, the Supreme Lord, in any of his features, Narayana, Krishna, Rama, etc., by chanting Hare Krishna. This practice will purify him, and at the end of his life, due to his constant chanting, he will be transferred to the kingdom of God. Yoga practice is meditation on the super soul within. Similarly, by chanting Hare Krishna, one fixes his mind always on the Supreme Lord. The mind is fickle, and therefore it is necessary to engage the mind by force to think of Krishna. One example often given is that of the caterpillar that thinks of becoming a butterfly and so is transformed into a butterfly in the same life. Similarly, if we constantly think of Krishna, it is certain that at the end of our lives, we shall have the same body constitution as Krishna. Om Jnanati Miram Hasya Jnanyan Shalakaya Chakshurul Mithabhi Natasani Shri Gravya Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Binda Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. So, kal humne kya dekha? Anybody? इसलिए भगवान ने आज के श्लोक में कह रहे हैं अभ्यास योगी, इसलिए अभ्यास करना हो। अभ्यास करना हो, अभ्यास योग युक्त है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है अभ्यास। भक्ति जो है वो अनुशीलन की जाती है, ऐसा नहीं कि बस केवल इच्छा करने से हो जाता है। बहुत से लोग केवल इच्छा करते हैं, विशफुल थिंकिंग। हम बस भगवान के धाम जाना चाहते हैं, बस हम चाहते हैं कि हम भगवान के धाम जाए, लेकिन उसके लिए कुछ करते नहीं जो आवश्यक है, या बहुत कम करते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं, हमें बस IAS बनना है। अब वो बनना है तो उसके लिए उस स्तर का फिर तैयारी भी होनी चाहिए, केवल इच्छा करने से। बहुत लोग हैं जो इच्छा करते हैं, हाँ, प्रयास करने पर भी, सही प्रयास करने पर भी कुछ लोग प्राप्त कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं वो दूसरी बात है, वो भाग्य के अनुसार भी होता है। लेकिन अगर प्रयास ही नहीं करोगे तो फिर भाग्य भी क्या करेगा, क्योंकि भाग्य से जो भी मिलना है वो भी तो प्रयास तो फिर भी करना पड़ेगा। प्रयास करने पर जो भाग्य में है वो मिलता है। तो भौतिक परिप्रेक्ष्य में भी जब ये बात है तो आध्यात्मिक क्षेत्र में तो भाग्य की बात नहीं होती है। वहां ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति प्रयास करे लेकिन भाग्य में नहीं था इसलिए उसको भक्ति नहीं मिली, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भक्ति जब भाग्य से संचालित नहीं होती। लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा। इसलिए केवल बस इच्छा करना कि हाँ बस हम भगवान के धाम चले जाएंगे और कुछ उसके लिए जो भी आवश्यक जितना प्रयास है वो नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो इसलिए हमें भली भांति जानना चाहिए कि तरीका क्या है भगवत प्राप्ति का, प्रोसेस क्या है, उसको अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। और उसको जानने के बाद में उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है अपने जीवन में। और वहीं पर कठिनाई आती है, क्योंकि तो इच्छा करना तो बड़ा आसान है, हम भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे, भगवत धाम चले जाएंगे, ये बड़ा आसान है इच्छा करना। लेकिन उसके लिए अभ्यास करना वही कठिन है, वहीं पर है जहां पर वो कठिन क्यों लगता है। एक्चुअली भगवान की भक्ति सेवा करना तो बड़ा आसान है वास्तव में, तो वो जीव की स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन हमारे अंदर भोग वासनाओं के इतने सारे अनर्थ के कारण इतने सारे अनर्थ घुसे हुए हैं कि वो भगवान की सेवा बड़ी मुश्किल लगती है। भगवान की सेवा मतलब सतत रूप से भगवान का स्मरण करना, तो बड़ा आसान होना चाहिए जीव के लिए हमेशा भगवान का स्मरण करना, क्योंकि जीव का स्वभाव ही है भगवान का स्मरण करना, तो इसमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी हम देखते हैं कितनी कठिनाई होती है भगवान का स्मरण करने में, क्योंकि अभी मन जो है प्रदूषित है। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं माइंड इज फिकल, भौतिक मन जो है बहुत चंचल है, भौतिक मन, क्योंकि वो भौतिक तीनों गुणों के द्वारा अभी प्रदूषित है। आत्मा का जो अपना मन है, जो शुद्ध मन है, वो सिंपल है, वो तीनों गुणों के द्वारा आच्छादित नहीं है, वो तो केवल कृष्ण का ही स्मरण करता है। लेकिन वो अभी स्विच ऑफ है, वो माइंड अभी डोरमेंट स्टेज में। आत्मा जो है, आत्मा यानी कि आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक इंद्रियां, वो सब सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय बैठी हुई है अज्ञानता के कारण, माया के टच में आने के कारण। माया ने उसको पहले निष्क्रिय बना दिया, डोरमेंट। और मटेरियल माइंड, मटेरियल इंटेलिजेंस अभी ऑन बिहाफ ऑफ आत्मा वो काम कर रही है, वो एक्टिव है। इसलिए अभी जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो मटेरियल माइंड कर रहा है। और जब हम भक्तों के संपर्क में आने के बाद से, अभी जब हम भगवान के बारे में सुनना शुरू किया, भगवान की सेवा करना शुरू किया, अभी दोनों माइंड फिर काम करते हैं। जब जब भगवान की सेवा का जो विचार आता है वो स्पिरिचुअल माइंड से होता है, और भोग करने का विचार वो सब मटेरियल माइंड से होता है। तो इस प्रकार से हमारे इस समय दोनों शरीर काम कर रहे हैं पार्शियली। भक्तों के संपर्क में आने के बाद साधक के लिए एक आध्यात्मिक शरीर भी एक्टिवेट होना शुरू हो गया है, पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ है बट इन द प्रोसेस। तो जैसे जैसे प्रगति होगी वैसे वैसे वो स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिव होती रहेगी, डोरमेंट स्टेज से एक्टिवेटेड होती रहेगी, और उतना ही मटेरियल माइंड जो है, इंटेलिजेंस जो है, वो पूरा उसी स्पिरिचुअल माइंड और इंटेलिजेंस के अनुसार काम करेगा, ट्यून, उसी ट्यून में काम करेगा। क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी वो जब जगता है तो उसकी शक्ति है कि वो मटेरियल चीज को अपने अनुसार संचालित करे। तो वर्तमान में तो हमारा जो मटेरियल माइंड है इससे हमको स्पिरिचुअल यानी हम जो हैं उसको मटेरियल माइंड इसकी लड़ाई होनी है, हमें उसको ट्यून करना है, मटेरियल माइंड को स्पिरिचुअलाइज करना है, इसको शुद्ध करना है, तो अपने को जगाना है। जितना हम जगेंगे अभ्यास करने से उतना ही हमारा जो है वो स्पिरिचुअल माइंड, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जागृत होगी, यानी आत्मा जागृत होगी, तो स्वाभाविक रूप से फिर हमारे थॉट्स जो हैं वो भगवान की सेवा में जाएंगे। तो ये है अभ्यास, ये है अभिधेय, ये है हमारा भक्ति का प्रोसेस। तो इसलिए ये अभ्यास क्या है, इस प्रोसेस को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो क्या है भक्ति सामर सिंधु में, इसको बहुत विस्तार से रूप गोस्वामी ने समझाया। इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा ग्रंथ है भक्ति। तिरसामृत सिंधु। तो आप में से कितने लोग पढ़े हैं? 16th चैप्टर तक पढ़े हैं। आप लोग रेगुलरली पढ़ाई करते हैं प्रभुपाद पुस्तक, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसा नहीं कि बस लेक्चर सुन लिया थोड़ा, तो आधा घंटे का होता है स्वाध्याय, जिसमें आप प्रभुपाद की पुस्तक को पढ़ के डीपली कंटेम्पलेट कर सके, वो बहुत जरूरी है। तो उसको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। तो भक्ति सामर सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं आदौ गुरु पादाश्रय। ये जो भक्ति का जो प्रोसेस है हमारी तरफ से जो शुरू होते हैं, जिसमें अभी हम उसको इनिशिएट करते हैं, वो शुरू होता है जब हम एक गुरु का शेल्टर लेते हैं। दैट इज द ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। उससे पहले जो हो रहा था वो हम नियोजित तरीके से प्रयास नहीं कर रहे थे, वो तो भक्तगण हमको ये इनके इन प्रकार भक्ति में लगा रहे थे, विदाउट इवन अवर नोइंग, विदाउट अवर इंटेंशनली ट्राइंग, हम अपनी तरफ से प्रयास नहीं कर रहे थे। तो लेकिन तो आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, हमारे अंदर एक श्रद्धा जो थी अज्ञात सुकृति के कारण इत्यादि, उससे हम लोग साधुओं के पास में गए, लेकिन इतना कोई समझ नहीं कि हाँ भक्ति करनी है, बस साधुओं के पास संग है, अच्छा लगता है, ठीक है, थोड़ा कोमल श्रद्धा। फिर साधु संग के आने के बाद से जब भजन क्रिया प्रारंभ होती है तीसरा स्तर, तो वो आरंभ होता है यहाँ से, आदौ गुरु पादाश्रय, एक आध्यात्मिक गुरु की शरण लेकर लेने से वो प्रोसेस अभी शुरू होता है, अभी हमारा अभ्यास शुरू होता है। उसके बिना सिस्टमेटिकली वो प्रोसेस ढंग से शुरू नहीं होता है। जब तक गुरु की शरण नहीं ली जाती है तब तक मनमानी ढंग से है, जितना मन को अच्छा, वो मेन मन ही चल रहा है, शरणागति वहां प्रारंभ नहीं हुई। शरणागति प्रारंभ होती है जब हम गुरु की शरण लेते हैं, वहां से शरणागति प्रारंभ होती है। उससे पहले तो जितना मन में, मन को जो अच्छा लगा किया, जैसे अर्जुन भगवद्गीता भगवान को शरणागत होने से पहले भगवान के साथ, हाँ ठीक है भगवान आप ऐसा करें, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है मुझे ऐसा अच्छा लगता है मुझे। लेकिन रियल अभ्यास शुरू होता है जब शरणागति होती है। अभी ये सब मेरे मन में ये चल रहा है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, वो सब खत्म। पादाश्रय गुरु, अब आप बताइए मुझे क्या करना है। शिष्यस्ते हम शादीमाम त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्नम, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रपन्नम प्रपत्ति शरणागति, दिस इज द हॉलमार्क ऑफ द प्रोसेस। जो भक्ति के प्रोसेस का जो हॉलमार्क है, हॉलमार्क मतलब द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट है, वो है प्रपत्ति शरणागति। तो शरणागति को अच्छे से समझना होगा। तो शरणागति के छह अंग हैं, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से विवर्जित, जो भी अनुकूल है अंकुर कैसे देंगे, सब कुछ समझना है गुरु के माध्यम से। इसलिए गुरु की शरणागति होने से सब कुछ शुरू होता है। ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्ण, सो फ्रॉम हिम वी अंडरस्टैंड एंड बाय सर्विंग हिम वी सर्व कृष्ण। तो अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से विवर्जन, जो भी प्रतिकूल को छोड़ना है। रक्षिष्यति इति विश्वास को ते वर्णन था, भगवान शरणागति की रक्षा करते हैं तो निश्चिंत होना कि अगर मैं भगवान की सेवा में पूरे हृदय से लगा हुआ हूं, बस मुझे और कहीं अपने रक्षा के लिए हाथ पैर फेंकने की जरूरत नहीं है। आई हैव टू टेक ओनली शेल्टर ऑफ ओनली कृष्ण, नो वेयर एल्स, आई डोंट नीड एनी अदर शेल्टर, ओनली वन शेल्टर, एंड देर इज ओनली वन शेल्टर, इज नॉट अनदर शेल्टर। रक्षिष्यति इति विश्वास गोप्तत्वे वर्णन तथा, और पूर्ण अपने को पूर्ण तरह से निर्भर अनुभव करना भगवान के ऊपर, हम पूरी तरह से उन पर ही निर्भर है, हमारी अपनी कोई शक्ति नहीं है, हम पूरी तरह से उन्हीं के द्वारा मेंटेन्ड है, हमारी भक्ति उनके द्वारा मेंटेन्ड है, हमारा शरीर उनके द्वारा मेंटेन्ड है, वी हैव नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, हम उन पर इतने आश्रित हैं कि उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है भगवान के अलावा, इस प्रकार से समझना। और जो भी भगवान की इच्छा है उसी के अनुसार अपनी इच्छाओं को ढालना, तो वो सब गुरु के शरणागति में ही सब काम होता है, क्योंकि डायरेक्टली तो भगवान की इच्छाओं कैसे जानेंगे। और हमेशा तुच्छ, तृण के समान अपने को तुच्छ सेवक मानना, समझना। और ऐसे बहुत सारे, फिर शरणागति को डिटेल में हम लोग इन्हीं चीज़ों को विस्तार में, जैसे भक्तिवन ठाकुर ने एक पूरा बहुत सारे वैष्णव सॉन्ग्स लिखे हैं शरणागति। तो इस प्रकार से ये जो शरणागति है, प्रपत्ति, वही हमारी एकमात्र आशा है। तो अन्य योग साधना इत्यादि करने के लिए हम लोग योग्य नहीं है, सही से नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर क्षमता नहीं है। हमारे तो एकमात्र शेल्टर है कृष्ण, कृष्ण की शरणागति लेने से हमारा उद्धार होगा, इसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो ये अभ्यास का प्रारंभ है शरणागति। तो सबसे पहले श्री प्रभुपाद की शरणागति, जो वर्तमान समय में भगवान के द्वारा एक भेजे गए ऐसे सेनापति हैं, जो विशेष रूप से इस कलयुग में वर्तमान समय में कैसे सबको भक्ति प्रदान करनी है उसके लिए भगवान ने उनको भेजा है। तो इसे श्री प्रभुपाद की शरणागति सबसे पहले थी। तो श्री प्रभुपाद की शरणागति का मतलब क्या है? प्रभुपाद जो हमें बताए हैं, जैसा जीवन जीने को दिए हैं वैसा ही हम जीवन जीएं, हमारा जीवन को समर्पित है। तो अगर हम लोग इस निष्कर्ष पे आ पा रहे हैं तो बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए, अगर हम प्रभुपाद को शरणागत हो पा रहे हैं। और जब हम यहाँ शरणागति कह रहे हैं, मतलब इट्स जितना भी हमारे हाथ में है उतना हम प्रभुपाद के अनुसार जीवन जिए, दैट इज कॉल्ड शरणागति। विवशता है दूसरी बात है, बट जितनी हमारी शक्ति है, एज फार एज वी कैन डू, दैट मच वी शुड लिव अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ श्री प्रभुपाद। नहीं जियेंगे प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन के अनुसार, प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन मतलब कृष्णा इंस्ट्रक्शन कमिंग थ्रू प्रभुपाद, प्रभुपाद हैज नॉट गिवन एनी हिज ओन इंस्ट्रक्शन। तो अगर हम नहीं जियेंगे उतना, फिर हम वो शरणागति नहीं है, तो उतना ही हमें फिर कृष्ण की शरणागति नहीं मिलेगी। सो ये यथा माम प्रपद्यते, जिस अनुपात में हम भगवान की शरण में जाएंगे उसी अनुपात में हमें भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो विचार हमें करना है, हम क्या किस चीज के लिए तैयार है, हमें अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का यहाँ पर अभी उपयोग करना है, व्हाट डू वी वांट। तो इस प्रकार से श्री प्रभुपाद की शरणागति करना पहले, और उनकी शरणागति यदि हमारी है तो हम प्रभुपाद को जानने की कोशिश करेंगे अच्छे से, प्रभुपाद एक एक चीज हमें क्या बताएं, कैसा जीवन जीने को होता है उसको, और प्रभुपाद को हम कैसे जानेंगे, प्रभुपाद की पुस्तकों से जानेंगे सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण। तो अच्छे से प्रभुपाद की पुस्तकों को स्टडी करना चाहिए, हमारा पूरा एक लाइफ का एक गोल होना चाहिए कि हमें श्री प्रभुपाद की सारी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझना है, केवल पढ़ना नहीं है, समझना है और अप्लाई करना है लाइफ में। तो उसके लिए हमारा पूरा प्रोग्राम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टाइम मिला कभी कभार, ठीक है कभी टाइम मिल गया तो पढ़ लिया, टाइम निकालना पड़ चाहिए, मिल गया नहीं टाइम निकालना चाहिए, ऐसा नहीं कि टाइम मिल गया तो पढ़ लिया, दैट मीन्स वी आर नॉट सिंसियर टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रभुपाद वांट। तो फिर शरणागति कैसे होगी, समझेंगे ही नहीं कि प्रभुपाद क्या चाह रहे हैं तो फिर कैसे शरणागत होंगे। तो इसलिए वी शुड हैव अ प्लान हाउ टू स्टडी प्रभुपाद बुक्स, ओके एवरीडे। जैसे हम लोग प्लान करते हैं बहुत सारी चीज़ें, खाने के लिए प्लानिंग करते हैं ना, खाना कहाँ बनेगा कैसे बनेगा, इतना सब प्लानिंग करते हैं, उससे भी कहीं कहीं गुना ज़्यादा प्लानिंग होनी चाहिए, हाउ आई एम गोइंग टू स्टडी प्रभुपाद बुक्स, कौन कौन सी बुक्स हैं, ओके दिस मैनी बुक्स, एवरीडे कितने पन्ने पढ़ने होंगे, कुछ प्लानिंग करिए ना, कैसे कैसे पढ़ेंगे नहीं तो वो सारी इंस्ट्रक्शन, एक बार नहीं पढ़ने हो तो कई कई बार पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये विषय बड़ा गूढ़ है और हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं है, यदा कदा पढ़ लिया, जब जब मन में आया, जब बड़े उदास हो गए या कभी टाइम मिल गया तो फिर चलती का नाम गाड़ी, ऐसे होगा, उससे कोई मजबूत स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी उससे। सामने बहुत बड़ा शत्रु है ना माया, दुरत्या, तो अभ्यास ढंग से करना पड़ेगा नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए हम जितना भौतिक चीजों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा प्लानिंग हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए होनी चाहिए, भक्तों के लिए। भौतिकता वाले लोग तो मेटेरियल प्लानिंग के लिए, इनका जीवन ही उसी के लिए बना हुआ है, इसलिए वो तो सुबह से शाम तक उसी की प्लानिंग करते हैं, पर देखिए उनको उदाहरण भी देखिए, वो कितनी प्लानिंग करते हैं, कितना उनका दृढ़ता है ना? तो उसी प्रकार से हमारी दृढ़ता होनी चाहिए, हमारा एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, हाउ टू प्रोग्रेस, हाउ टू मेक माई सेल्फ स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग टू सर्व कृष्णा, तो उसी प्रकार से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए और प्लानिंग को फिर एग्जीक्यूट करना है। तो प्रभुपाद की पुस्तकों को स्टडी करने का एक पूरी योजना बनाइए ढंग से, ठीक है, लाइफ लॉन्ग, नॉट जस्ट जब तक आप बेस पे रह रहे हैं तब तक के लिए, लाइफ लॉन्ग। आप कहे जो भक्ति ऐसा नहीं कि अभी आप कुछ दिन बेस में यहाँ से निकल करके टाटा बाय बाय, बहुत लोगों का ऐसे ही होता है। बहुत लोगों के जीवन में भक्ति कैसे होती है, ठीक है आपने बहुत कुछ किया जीवन में, भक्ति भी की, कभी कभी हम भक्ति भी किए थे जीवन में, कुछ साल थे हमारे जो आप बेस में रहते थे मंदिर जाते थे, हाँ वो ठीक है हो गया, फिर वो फेज खत्म हो गई जीवन की, अभी दूसरी फेज शुरू हो गई। ऐसे भी होगा, कई लोग ऐसे भी करते हैं, लेकिन फिर उनको दे डोंट गेट एनीथिंग रियल, कभी वो भगवान को नज़दीक नहीं जा पाते हैं। तो नज़दीक आए बट देन दे वेंट अवे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चाहे जॉब करें, चाहे आप फार्म कम्युनिटी में रहें, चाहे आप फुल टाइम रहें, बट यू शुड मेक दिस कि लाइफ लॉन्ग आपको भगवान की सेवा में आगे बढ़ते रहना है। यू शुड नॉट बी जस्ट कि अभी बेस में कुछ समय के बाद चले गए, फिर खत्म हो गए बस, उससे फिर क्या फ़ायदा होगा, आपको इतना मौका मिल रहा है लेकिन आपने वो गंवा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो मेक अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू रीड प्रभुपाद बुक्स ऑलवेज। प्रभुपाद आपको शरणागति जीवन भर रखनी है, फिर प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना और हमेशा से आगे बढ़ते रहना, जितना भी हम कर पा रहे हैं उससे और ज्यादा करने का प्रयास करते रहना। और जब आप पढ़ेंगे प्रभुपाद पुस्तक, प्रभुपाद का संग पढ़ेंगे, तो धीरे आपके अंदर स्फूर्ति आएगी, जो पहले असंभव था वो संभव हो जाएगा, आपके अंदर इच्छाएं बलिष्ठ होंगी। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर तो कोई और चांस नहीं, प्रभुपाद का संग नहीं करेंगे, भक्तों के संग में रह करके, तो फिर वो धीरे 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 क्या होगा, वो जो चिंगारी अभी जगी है वो मंद हो जाएगी। तो अभी आप लोगों को सबको विचार करना है कि ये जो चिंगारी जगी है आप लोगों के हृदय में, वो और अग्नि का रूप ले, ना कि वो बुझ जाए, ऐसा हमको आगे प्लानिंग करना चाहिए कि वो चिंगारी अभी और आगे अग्नि का रूप ले, जो बुझाई नहीं जा सके, इट शुड टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, जिससे कि वो चिंगारी बड़ी अग्नि के अंदर चली जाए और फिर हमेशा से वो अग्नि के रूप में रहेगी। सो भोपाल पुस्तक और यहाँ जैसे शब्द बता रहे हैं, हियरिंग और वाइट कम सा होगा कि नहीं, लगे
उसको क्लॉथ पे
ये थोड़ा गीला है आपका। फिर पूरा जो प्रोसेस है, तो हियरिंग, हियरिंग इज द फर्स्ट स्टेप, करेक्ट, प्रोसेस के अंदर हियरिंग के अंदर प्रभुपाद पुस्तक पढ़ना मुख्य रूप से प्रभुपाद पुस्तक, अन्य भक्त जो सिंसियर हैं प्रभुपाद के शिष्य इत्यादि तो उनकी पुस्तक भी पढ़ना, लेकिन प्राथमिक रूप से श्री प्रभुपाद पुस्तक पढ़ना कभी भी पूरे जीवन में। हमारा प्राथमिक जो मेन जो स्टडी का फोकस है, दैट शुड बी ऑलवेज श्री प्रभुपाद बुक्स। तो हियरिंग के अंदर प्रभुपाद पुस्तक पढ़ना और ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र सुनना, प्रार्थना करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना, देन दैट शुड बी लाइफ लॉन्ग। जो भी हम भक्ति तो लाइफ लॉन्ग, लाइफ क्या, लाइफ आफ्टर लाइफ, नॉट जस्ट दिस लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ वी शुड मेक कमिटमेंट। तो ठीक है, कम से कम इस लाइफ का कमिटमेंट करेंगे तो संभावना है कि आफ्टर लाइफ भी कमिटमेंट बना रहेगा। सो सेकेंड कमिटमेंट शुड बी कि लाइफ लॉन्ग वी शुड चैंट हरे कृष्ण, एंड नॉट जस्ट तोता चैंटिंग, बट चैंटिंग मीन्स विद फुल हार्ट, विद फुल एब्जॉर्प्शन, विद फुल अटेंटिवनेस, विद फुल प्रेयर्स, कृष्णा प्लीज आई वॉन्ट टू कम क्लोज टू यू, आई वॉन्ट टू बिकम योर सर्वेंट, आपके शुद्ध भक्त बना, आपकी शुद्ध सेवा की हमारी मनोवृत्ति बने, ये प्रार्थना के साथ में जप होना। तो इसके लिए बहुत कंटेम्प्लेशन चाहिए, 2 घंटा प्रार्थना करना आसान है क्या? हम मंदिर में आते हैं कितनी देर प्रार्थना करते हैं, तो भगवान देवता थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं, इतनी सारी इतनी भौतिक इच्छा होती है उसके लिए हम थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं जाकर। तो भगवान के सेवक बनने के लिए कितनी तीव्र इच्छा होनी चाहिए आप ये सोचिए, क्योंकि वो तो हमारा प्राण है, प्राण से भी अधिक महत्वपूर्ण है कृष्ण सेवा। जब ये समय में आ जाएगा तो हमारी ये बलिष्ठ इच्छा बनेगी कि आई हैव टू समहाउ, कुछ भी हो जाए आई हैव टू ये माया के पास से निकल करके अपनी स्वाभाविक स्थिति में पहुंचना है। वो जो बहुत प्रबल इच्छा होगी और फिर जब आप देखेंगे कि कितना मुश्किल है उस स्तर पर पहुंचना, क्योंकि माया में हम इतने ग्रस्त हैं, तो फिर आपको पता लगेगा कि कितना प्रार्थना करने की जरूरत है, तब फिर वो हेल्पलेस नेचर, हेल्पलेस कंडीशन का बोध होगा। पहले तो लक्ष्य के प्रति जब हम बहुत उत्सुक हो जाएंगे और फिर जब पता लगेगा कि लक्ष्य को प्राप्त करना कितना मुश्किल है, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी, सो डिफिकल्ट, तो फिर और एकमात्र उपाय प्रार्थना करना है। एकमात्र उपाय इज कृष्णा ओनली कैन हेल्प, मैं अपने आप से नहीं कर सकता हूं। जब ये समझ में आएगा देन यू विल बी रेडी टू एक्चुअली चैंट हरे कृष्णा इन प्रॉपर एटीट्यूड, इन हेल्पलेस मूड, देन ऑफेंसलेस चैंटिंग की तरफ फिर हम लोग बढ़ेंगे, जब ये हमारे को सब साक्षात्कार होंगे, जब समय में आएगा। नहीं तो फिर एक रिचुअल की तरह से हरे कृष्णा पूरा करना है, पूरा करना है, पूरा करना है, एज ए रिचुअल ऐसे चलता रहेगा। तो फिर हमें लगेगा कि फिर हम 2 घंटा ध्यान से प्रार्थना कर पाएंगे, फिर हम जब हम पता लगेगा 2 घंटा क्या 24 घंटा भी हम कर सकते हैं, एक्चुअली करना चाहिए, क्योंकि हमेशा प्रार्थना प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास, सदा प्रार्थना करना 24 आवर्स। और क्या हेल्पलेस कंडीशन मतलब क्या, यू विल बी ऑलवेज चैंटिंग। अब आप पानी में डूब रहे हैं है ना, और आपको अभी प्रार्थना करनी है, प्लीज निकालिए, तो कितना टाइम प्रार्थना करेंगे, जब तक डूब रहे हैं तब तक प्रार्थना करेंगे उसका टाइम नहीं हो चुका है, 2 मिनट प्रार्थना करता हूँ फिर डूब जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा ना। यू भी जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक प्रार्थना करेंगे, नेचुरली ऐसा होगा ना। You won't sleep, you won't do nothing, just take me out. You'll be so, you cannot think of anything else except praying. तो हमारी जब वो समझ आ जाएगी then you'll be able to chant 24 hours. सतत जब तमाम कर पाएंगे, जब इतनी हमारी समझ आ जाएगी। हमारी वो समझ नहीं है, हम लोग अभी भी थोड़ा सा चैंटिंग करते हैं, थोड़ा सा कभी को लगता है हाँ भगवान ये आपके सेवा करें, फिर बाद में माया हमको लुभा लेती है फिर से, हाँ जो हाँ ये भी अच्छा राइट है, सो देन अगेन वी फॉरगेट टू चैंट, दैट्स आवर कंडीशन। तो इसलिए उसके लिए भी अभ्यास, अभ्यास क्या है, जब के समय में अभ्यास करना, विचार करना कि हम क्यों जप कर रहे हैं, और इसलिए फिर उस समय ध्यानपूर्वक प्रार्थना करने का प्रयास करना, मन जहाँ जहाँ जाए, और बाकी पूरा जीवन बाकी समय में वो गंभीरता से उस प्रकार से जीवन जीना जो कि अनुकूल है। नहीं तो अगर हमारे हाथ में है और वो हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं भगवान की सेवा में, और फिर प्रार्थना करेंगे तो मन के अंदर से गिल्टी फीलिंग होगी, यार तुम ढोंग क्यों कर रहे हो, एक तरफ तुम्हारे जानबूझ करके भोग में लिप्त हो रहे हो और फिर इधर प्रार्थना कर रहे हो भगवान हमें भोग से निकाल लो, ये ड्रामा क्यों कर रहे हो, ऐसे हमारे माइंड के अंदर से पुकार आई है, ये ड्रामा क्यों कर रहे हो, व्हाई यू आर हिपोक्राइट, ये ढोंग क्यों कर रहे हो, सो वी वॉन्ट बी एबल टू डू दैट। तो निष्कपटता इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण, जो भी है निष्कपट होना चाहिए। अगर भौतिक इच्छाएं हैं हृदय में तो भगवान ये मेरी भौतिक इच्छाएं हैं, इनसे मैं निकलना चाहता हूं, तो ऐसी प्रार्थना करते हुए करना चाहिए। और कुछ भौतिक इच्छाएं हैं तो उसमें कुछ लग्न विवशता से कुछ भोग में संलग्न भी होना पड़ेगा, लेकिन वो केवल इसीलिए कि विवशता है, इसलिए मतलब प्रयास हमेशा उससे निकलने का होना चाहिए, और प्रार्थना उससे निकलने का, उसको कल्टीवेट नहीं करना है उसमें, और हमें अपनी क्षमता को देखना, यहाँ ये मैं रोक सकता हूँ तो क्यों नहीं रोकूंगा, प्रयास करना चाहिए रोकने का, उसमें बह नहीं जाना चाहिए। तो जब हम प्रयास करते जाएंगे देन कृष्णा विल सी यस ही इज एक्चुअली ट्राइंग। और अगर हमें लग रहा है कि नहीं मेरे तो मन में सेवा करना भगवान की शुक्र है, उसका तो इच्छा ही नहीं होती, भोग करने की ही इच्छा है, बाकी तो कोई इच्छा ही नहीं, तो फिर क्या किया जाए, यानी कि शुद्ध भक्ति भावना है नहीं, वो तो फिर वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो फिर स्वाभाविक रूप से फिर हम वो भक्ति करेंगे ही नहीं, कर ही नहीं पाएंगे फिर। फिर या तो प्रहलाद महाराज की तरह, फिर ध्रुव महाराज की तरह, फिर तीव्र भक्ति की जाए भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए. दैट इज द नेक्स्ट ऑप्शन. बट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट प्रेजेंटेज. कुछ भी चीज तीव्रता से कहां कर पाते हैं आजकल, ऐसे बड़ा मुश्किल है इतना तीव्र भक्ति करना. फिर भी यू शुड ट्राई, व्हाट एल्स यू कैन डू. कम से कम अगर भौतिक इच्छा है लेकिन हम समझ रहे हैं कि हम एक्चुअली भगवान कृष्ण है, ठीक. लेकिन वो आप लोगों के लिए नहीं है वो सब. आप लोग तो समझने वाले लोग हैं, समझ रहे हैं कि भौतिक सुख जीवन का लक्ष्य नहीं, वो स्पष्ट है. मेरी आशा है आप सब लोगों को. जैसे आप लोगों के लिए वो इंस्ट्रक्शन है ही नहीं, वो तो उन लोगों के लिए जिनके दिमाग में ये बैठता ही नहीं है कि जीवन का लक्ष्य भौतिक सुख नहीं, उन लोगों के लिए वो जरूरी है ध्रुव महाराज की तरह से उनको इंस्ट्रक्ट करना. सो आप लोगों को हमारी क्या स्थिति हो सकती है कि हम जानते हैं कि भौतिक सुख, ये भौतिक इच्छाएं गलत है, लेकिन वो मन में विराजित हुई है, ठीक है. उसके लिए भगवान बताते हैं भागवत में कि ऐसे भक्त को हमेशा हृदय में ग्लानी होनी चाहिए कि भौतिक इच्छाएं कब खत्म होंगी, कब खत्म होंगी, और भगवान से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए. और कुछ विवशता के कारण कुछ भौतिक सुखों में हम लोग संलग्न होंगे, लेकिन समझ में होनी चाहिए कि ये परमानेंट नहीं है, इनसे निकलना है. ऐसी इच्छा से हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए. हरे कृष्ण. एनी क्वेश्चन? योग साधना का प्रोसेस क्यों है,
मतलब उसके पीछे क्यों लग जाए?
क्योंकि भगवान में श्रद्धा होना आसान नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ भोग करने के लिए आए ना. तो भोग वृत्ति से बाहर निकलना कि नहीं हम तो सेवक हैं, इस बात को स्वीकार करना, ये जीव के लिए बड़ा मुश्किल है ना. भगवत धाम से यहाँ आई क्यों, वो इतना सरल था, इतना मुश्किल रास्ता आई क्यों? क्योंकि भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर के हम यहाँ आए और उसको आकर के अपना सारा परेशानी अपने ऊपर मोड़ ले. तो उसी प्रकार से जो योगी गण हैं, ज्ञानी गण हैं, तो उनके लिए तपस्या करना, अभी हिरण्यकशिपु है वो कितनी कठिन तपस्या किया है ना. तो हम उसको बोले रहे इतनी कठिन तपस्या करो, जस्ट चैंट हरे कृष्णा. हिरण्यकशिपु एक्सेप्ट करेगा? No. Why? Why you should chant Hare Krishna? To serve Vishnu. यही तो मैं. I want to become Vishnu. You are saying serve Vishnu. तो उसके लिए कितना मुश्किल है भगवान का सर्वेंट बनना when he is trying to become Vishnu. Most difficult. तो आसान नहीं है. जिसके हृदय में भोग करने की इच्छा है उसके लिए आप कह रहे हैं कि सेवा करो. क्योंकि चैंटिंग का मतलब केवल ऐसे नहीं हरे कृष्ण बोलना है, इट मीन्स टू सर्व कृष्ण. एंड टू सर्व इज नॉट इजी फॉर अ कंडीशन सोल हु इज हु हैज कम हियर टू एंजॉय. एंजॉयिंग एंड सर्विंग आर अपोजिट थिंग्स, इसलिए वो इतना कठिन है. प्रभुपाद की जय.